نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کتاب کے سلسلے میں سے ہم پہلے صحابی کی کہانی شروع کریں گے. صفحہ نمبر بتاتی ہوں تاکہ آپ سب میرے ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور تھوڑی سی انسٹرکشنز جو آپ سب کو فائدہ دیں گی اس کو سیکھنے کے لیے. تو کتاب باقاعدہ آج شروع کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہر صحابی کو ہم ان کی جو ترتیب ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں گے. اصل میں یہ سٹوری ٹائم ہے لیکن سٹوریز تاریخ کی اور ان کرداروں کی کہ جنہوں نے اسلام کی تاریخ رقم کی. کتاب کا نام چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ہے. تھوڑا سا ایک چیز کہوں گی کہ کچھ لفظ شاید اردو کے اعتبار سے آپ کو مشکل لگے, تو اس کے لیے جب میں آپ کے سامنے ریڈ کروں گی اور یا بعد میں پھر آپ خود ریڈ کیا کریں گے گھر میں, تو اس میں آپ مشکل لفظوں کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا آلٹرنیٹ چینج بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اردو کی کلاس نہیں, اردو کی باریکیاں بات کرنے کی ضرورت نہیں, اور سٹوری میں مزہ کب آتا ہے جب فلوئنٹ ہو. تو جب میں پڑھوں گی تو آپ دیکھیے گا کہ مشکل لفظوں کو میں خود بخود کچھ نہ کچھ چینج کر دوں گی آپ کے لیے, اور یہ اصل میں آپ کو سکھانا مقصود ہے کہ بعد میں جب آپ خود اکیلے میں اس کتاب کو پڑھیں گے, گھر میں بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے, جب کسی بھی طرح سے, تو آپ بھی اسی انداز سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صفحہ نمبر 15 ہے اور آج کے پہلے مسلم ہیرو جن کا ہم ذکر اس کتاب کے ناطے سے دیکھیں گے وہ ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ. اور ان کے بارے میں جو مشہور جملہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کیا. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پر مقدم جانا. چلیے شروع کرتے ہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ان ہزاروں جوانوں میں سے تھے جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ کے اوپر کی طرف تنیم کے مقام کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حبیب بن عدی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے رضی اللہ عنہ, جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا. یہاں اصل میں وہ واقعہ ہے, اگر آپ کے پاس بک ہے تو آپ اوپر لکھ سکتے ہیں. یہ جو فرسٹ اس کا آرٹیکل ہے آپ دیکھیں گے کہ پورے آرٹیکلز کے بعد دائروں کی صورت میں کچھ نئی بات شروع ہوتی ہے, تو جہاں تک ایک دائرہ ہے وہ ایک ٹاپک ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹاپک بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لکھاؤں گی. اور یہ ٹاپک کون سا ہے؟ سعید بن عامر کا اسلام کی طرف پہلا قدم. حقیقت میں یہاں وہ موٹیف بیان ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت آئی. اور یہ خود اپنے آپ کو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے حبیب بن عدی, جن کو کفار مکہ نے بہت بے دردی سے قتل کیا. نہ صرف یہ کہ قتل کیا بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور ظلم کی یہ کہانی دکھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو سر عام دعوت دی تھی کہ آؤ دیکھو ہمارے نظریات سے اختلاف کرنے والوں کو ہم سزا کیسی دیتے ہیں, ہم ان کو دنیا میں ہی اس طرح کی مثال بنا کے پیش کریں گے کہ لوگ پھر اس چیز کی طرف آنے کی ہمت بھی نہ کریں. وہی دھمکی کل تھی, یہی دھمکی آج ہے, اور قربانیاں دینے والے کل زیادہ تھے آج تھوڑے ہیں. اصولوں پہ سمجھوتے کرنے والے آج زیادہ ہوں گے, اس دور میں وہ اصول نہیں چھوڑتے تھے جان چھوڑ دیتے تھے. تو انہی میں سے ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ. تو ان کی شہادت کا واقعہ ہے پہلے پورشن میں جس کو سعید بن عامر دوسرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہی شہادت اصل میں حبیب کی تو شہادت بن گئی لیکن سعید بن عامر کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی. اب کہتے ہیں کہ میں حبیب کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, قریش نے جن کو پکڑا, ان کی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھوں سے اوپر گزرتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے. وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی عرب کے شخص سوار تھے जो अगली सफों में बैठे हुए थे। यानी ये कहते हैं कि मैं जवान था, जिस्म ताकत अच्छी थी, तो मैं उस मंजर को देखने के लिए आगे से आगे चला गया, सफों को फलांगता हुआ सबसे आगे चला गया ताकि मंजर अच्छी तरह नजर आए। और ये उस वक्त कुफर पे थे। उसे ये मौका इस तरह मिला कि कुरैश के इस कैदी को अपनी आंखों से देख सके। इसने इस मंजर का मुशाहिदा किया कि औरतें, बच्चे और जवान सब इसे मौत की वादी की तरफ बेदरेक धकेल रहे हैं। इनका मकसद ये था कि वो इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लें और यूं बदर के कत्ल किए हुए लोगों की रुसवाई का बदला चुकाएं। यहाँ ये चीज ऐड करवा दूं कि हुबैब का कत्ल जो था वो गजवे बदर के मार्के के बाद हुआ, क्योंकि उस वक्त तक लोगों को यानी जोश आ चुका था कि इन्होंने हमारे 70 सरदारों को हलाक किया, तो लिहाजा उन्होंने एक किस्म की जुल्म की कहानी शुरू कर दी। उन्हीं में से एक हुबैब बिन अदी थे, तो उनके कत्ल की कोशिश जो है तो उसका ये मंजर है। कहते हैं जब ये लोगों का जो रश था अपने इस कैदी को लेकर यानी हजरत हुबैब को लेकर इस मुकाम पर पहुंचा जो पहले से ही इसकी शहादत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था, तो इस मरहले पर लंबे चौड़े यानी लंबे कद वाले सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अनहो ने हजरत हुबैब रजी अल्लाह अनहो की तरफ नजर दौड़ाई। कुरैश के सरदार उसे तख्तेदार की तरफ ले जा रहे थे, यानी जहां उनको फिर सूली पे चढ़ाया जाएगा। उसने बच्चों, औरतों की चीहों पुकार और शोर में एक पुरवकार और पुरसुकून आवाज सुनी। हजरत हुबैब रदी अल्लाह अन्हो फरमा रहे थे, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ लेने की मोहलत दो। गौर कीजिएगा, आप भी अल्लाह के रास्ते में जान जा रही है, शहादत का मर्तबा मिल रहा है, क्या यही नेकी काफी नहीं थी जन्नत पाने के लिए? लेकिन नहीं, वो लोग जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में अटे होते हैं वो एक नेकी करके उसी को काफी नहीं समझते, वो उससे अगले ही मरहले पे जाने की कोशिश करते हैं। हुबैब सूली पे चढ़ने से पहले एक दरख्वास्त करते हैं और वो क्या है कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दो। और फिर सईद बिन आमिर ने देखा कि हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो जितनी दफा इन सहाबियों का नाम आए दिल की गहराइयों से कहा करे रजी अल्लाह अन्हो कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, किबले की तरफ मुंह करके खड़े हुए और 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकतें कैसी थी, इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल कि क्या कहने, कि इसके बाद इसने देखा कि कौम के सरदारों की तरफ मुंह करके हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो ये कह रहे हैं, बखुदा अगर मुझे इस बदगुमानी का अंदेशा न होता कि तुम कहीं ये न समझ बैठो कि मैंने नमाज को मौत के डर से लंबा कर दिया, तो मैं नमाज में और वक्त सर्फ करता, यानी और ज्यादा वक्त गुजारता। फिर उन्होंने कुरैश के सरदारों को अपनी आंखों से देखा कि वो हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो का जिंदा हालत में मुसला कर रहे हैं, यानी ये लोग इनके जिस्म का एक एक उज्व एक के बाद एक काट रहे हैं और साथ साथ ये कहते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम इस तकलीफ से बच जाओ? इनका इस हालत में कि खून के धारे जिस्म से फूट रहे थे जवाब ये था, अल्लाह की कसम मुझे कतन ये बात पसंद नहीं कि मैं अपने अहलोयाल में अमन और चैन से रहूं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। फिर जनाब सईद बिन आमिर ने देखा कि लोग फिजा में हाथ हिला हिला कर बुलंद आवाज से ये कह रहे हैं, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसके बाद उन्होंने हजरत हुबैब रदी अल्लाह अन्हो को देखा कि वो तख्तेदार पर अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाए हुए अल्लाह ताला से इल्तजा कर रहे हैं, इलाही इन सब जालिमों को शुमार कर, यानी इनको गिन ले और इन्हें तबाही का मजा चिखा और इनमें से किसी को माफ ना कर। ये कहकर उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। ये वो लम्हा था जब इनका जिस्म तलवारों और नेजों की जरबों से चूर हो चुका था और इतने जख्म खा चुका था कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। मैं और आप, हम सब अपने ईमान का जायजा लें। सईद बिन आमिर की बात तो बाद में देखेंगे, हुबैब का ईमान कैसा प्यारा है कि मुझे तकलीफ आ जाए लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा भी न चुभे और इस वजह से जिंदा जिस्म कट रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, वो कौन सा दिन था जब हमें इस्लाम के लिए आखिरी बार चोट पड़ी? वो कौन सा दिन था जब हमें इस्लाम की वजह से किसी ने ताना दिया? वो वो कौन सा दिन था जब इस्लाम की वजह से लोगों ने हमारी दुनिया जीरन कर दी? कोई भी तो नहीं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि अल्लाह के सामने कल कयामत के दिन पेश कर सके कि अल्लाह ये तेरे रास्ते में छोड़ के आई हूँ, ये कटा के आई हूँ। ये सहाबे कराम क्यों इनको रदी अल्लाहु अन्हु का टाइटल मिला? क्योंकि वाकई इन्होंने दुनिया में अल्लाह को राजी कर दिया। इनकी जिंदगियां रब की रजा वाली थी और इनकी मौतें भी रब की रजा वाली थी, और इस मंजर ने अब सईद बिन आमिर के दिल को बखला दिया। अगला हिस्सा शुरू होता है इस चैप्टर का। इसका टॉपिक आप लिख सकते हैं, और इस्लाम सईद बिन आमिर के दिल में था ही अब जुबान पे आ गया। मुख्तसर कह सकते हैं, और इस्लाम जुबान पे आ गया। कुरैश भी आखिर मक्का वापस लौट गए, यानी हुबैब को तकलीफ देने के बाद अब वापस गए, और इसके बाद पेश आने वाले बड़े बड़े संगीन मारकों के नरगे में हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो और इनके वाकयात शहादत को बिल्कुल भुला गए। यानी उसके बाद उन्होंने और भी लोगों के साथ ऐसी जुल्म की कहानियां की कि लोगों को हुबैब की शहादत भूल गई। लेकिन इस नौजवान सईद बिन आमिर रदी अल्लाहु अन्हु के दिल के पर्दे पर एक लम्हे के लिए भी हजरत हुबैब की शहादत का मंजर महव ना हो सका। चुनाचे जब भी सोते ख्वाब में ये मंजर बराबर दिखाई देता, और बेदार होते तो ख्याल की आंख से यूं देखते कि जैसे हुबैब सूली के तख्ते पर चढ़े हैं और पूरे इत्मीनान के साथ 2 रकत नमाज अदा कर रहे हैं, वही जो उन्होंने उस शहादत से पहले पढ़ी थी। यही नहीं, बल्कि इनकी पुरदर्द आवाज जैसे इनके कानों में गूंज रही है, और वो कुरैश के खिलाफ बददुआ में मसरूफ हैं, और इस ख्याल से इनका कलेजा दहल जाता कि कहीं आसमान का कड़का इनको ना ले और आसमान से पत्थर गिरकर इनको तबाह न कर दें। हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हो ने जामे शहादत नोश करके जनाबे सईद रजी अल्लाह अन्हो को वो सब कुछ सिखा दिया जिसका इन्हें पहले कतई इल्म न था। क्या सिखाया? इन्हें सिखाया कि हकीकी जिंदगी अकीदा और अकीदे की राह में ता दमे आखिर मुसलसल जिहाद का नाम है। दोबारा बोलूंगी ताकि हम भी अपने ईमान को चेक करें और हम भी देखें क्या हमने भी ये बात सीखी कि नहीं, क्या कि असल जिंदगी अकीदा और अकीदे की राह में आखिरी दम तक मुसलसल जिहाद करने का नाम है। अल्लाह अकबर, हमें तो अकीदे की कोई बात मालूम ही नहीं, हम उसके तकाजे कैसे पूरे करेंगे? हमें तो पढ़ना मुश्किल लगता है, हमें तो सुनना मुश्किल लगता है, लेकिन उनका हाल देखिए कि इसके नाम पे जिंदगियां कुर्बान करने वाले, क्योंकि उनको पता था कि बंदे मोमिन की जिंदगी आखिरी दम तक जिहाद का नाम है। आराम नहीं है उसकी जिंदगी में, वो तो एक ही जगह आएगी जहां वो सुकून और आराम से रहेगा। ये दुनिया काम का वक्त है, आराम का वक्त नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने इस वाक्य से सीखी और हमें भी सीखनी है इंशाल्लाह, वो ये थी कि पुख्ता और मोहकम ईमान, यानी पुख्ता ईमान ऐसे अजीबोगरीब किरदारों को जन्म दे सकता है जो आम हालात में सामने नहीं आते। क्या बात हुई कि जब इंसान का ईमान पुख्ता होता है ना, तो उसकी वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसकी वो करेक्टर बिल्डिंग होती है जो आम हालात में नहीं होती। क्या आपने नहीं कभी देखा, आम हालात में आप बड़े नाजुक बने फिरते हैं, लेकिन जो ही को मुश्किल हालात आते हैं तो इंसान फिर गिरने वाला नहीं थामने वाला बन जाता है। नाजुक अंदाम लड़कियां जिनके नाज और नखरे बहुत होते हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा आ जाता है जिंदगी में, शोहर चला गया, बच्चे पालने पड़ गए, तो आप देखिए कि वही लड़कियां कितनी मजबूत हो जाती हैं। और हकीकत भी यही है कि मुसीबतें हमारे अंदर की खैर को बाहर लेके आती हैं। जैसे आतिशफिशां फटते हैं तो उनके फटने से जमीन अपने खजाने कभी कभी उगल देती है। लोगों को खबर भी ना होती कि इस जमीन में इतने खजाने हैं, लेकिन आतिशफिशां उसको खोल के रख देता है। तो लिहाजा अल्लाह के रास्ते में जब कोई मुश्किल आए, अल्लाह के रास्ते में जब कोई आजमाइश आए, तो फौरन ही देखना है कि क्या मैंने इस आजमाइश से कुछ सीखा, क्या वाकई मेरी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई इस चीज से, और मैंने वो चीज सीख ली जो मुझे इस मुसीबत में डालने से सिखाना मकसूद थी। इसके अलावा उन्हें इस हकीकत का भी एहसास हुआ कि वो शख्स जिससे उसके दोस्त इस दर्जे मोहब्बत रखते हैं कि इस पर जान निछावर कर दे, बिलाशुबा अल्लाह का सच्चा रसूल है, जिसकी हिमायत के सामान आसमान की तरफ से मुहैया होते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम की मोहब्बत भी देख ली, कि कैसे आप पे इज्जत नहीं आई और अपनी जान कटवा दी। आज हम अपने दिल को चेक करें, क्या मेरे दिल में अल्लाह के नबी सल्लम के लिए ऐसी ही मोहब्बत है? क्या आज उनके बारे में कोई गलत बात कह दे तो क्या मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी उस दौर के लोगों को होती थी? क्या आज हम अल्लाह के नबी सल्लम के तरीकों पे अमल करके ही लोगों की नजरों में ऊंचा बनना या उनकी नजरों से गिरना, इन्हीं जज्बात और इन्हीं कोशिशों के अंदर मुलविस नहीं रहते? हम सबको अपने ईमान का जायजा लेना है, क्योंकि देखिए ईमान बीज की तरह है, जब बीज मजबूत होता है तो पौधे भी उगते हैं। अमल के पौधे बीजों पे लगते हैं, ईमान कमजोर है तो बात नहीं बनेगी। आज ईमान तो है लेकिन कमजोर है, इसलिए पौधे नहीं उगते, फल नहीं लगते। वो फसल आज नहीं तैयार हो रही मुसलमानों की जो मकसूद थी। दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, पहाड़ सिमट कर उनकी हैबत से राई। ये वो लोग थे जिनके लिए अलामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह के नबी से सलम के साथी हैं। एक सच्चा मोमिन कहीं आ जाता है तो उसके इर्द गिर्द की जमीन में इर्तयाश आने लगता है। आज हम इतने होने के बावजूद इर्तयाश तो छोड़िए, हल्की सी जुम्बश भी अपने इर्द गिर्द पैदा नहीं करते। क्यों? कि आज हमारे अंदर वो ईमान नहीं, आज वो कुर्बानी का जज्बा नहीं। और यही बात थी जिसको सीख के फिर सईद बिन आमिर का सीना इस्लाम के लिए खुल गया। सारे मजमे के सामने उन्होंने आकर ऐलान कर दिया कि मैं बुत परस्तों की आलाइशों यानी गंदगियों से पाक होकर और बेख्तियार बुतों से मुंह मोड़कर एक अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम करता हूँ, यानी मैं आज से मुसलमान हूँ। अल्लाह अकबर, क्या हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा? एक कत्ल होता देख के, एक जुल्म होता देख के सईद बिन आमिर का सीना खुल गया। आज भी इस्लाम के नाम पे कत्ल मौजूद है, आज भी ऐसी वहशतनाक तस्वीरें सरेआम दिखाई जाती हैं। क्या ये तस्वीरें हमें रिवायती मुसलमान से शौरी मुसलमान में बदलती हैं? हम खबरें भी सुनते हैं, हम ऐलानात भी सुनते हैं, लेकिन नई बात बनती। यहाँ से एक और बात भी पता चलती है, हम नहीं जानते आज के दौर में भी जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, न जाने किस किस जुल्म को देखने के बाद उनके सीने खुल रहे हैं। यहाँ से एक और बात भी मालूम होती है, वो नोट कीजिएगा कि अल्लाह ताला शर में से खैर निकालता है। हुबैब की मौत शर लगी, लेकिन सईद बिन आमिर को जिंदगी मिल गई, इस्लाम की जिंदगी मिल गई। यहाँ से एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या कि बाज दफा इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता कि मेरे किस अमल से खैर कहाँ तक जाएगी। जब खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत हो रही थी, उन्होंने तो ये सोचा भी ना था कि मेरा ये दुनिया से जाना और मेरी ये इस्तकामत किसी के दिल में ईमान डाल देगी। वो दुनिया से चले गए और सईद बिन आमिर का सदका जारिया छोड़ गए, जिनके लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, कोई तबलीग नहीं की, लेकिन एक अच्छा अमल दूसरे को इस्लाम की तरफ ले आता है। इससे एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या कि जब कुर्बानियां देने वाले थोड़े से ही लोग क्यों ना मौजूद हों, लेकिन उनकी मौजूदगी दूसरों को इस्लाम के रास्ते में जमाने के लिए काफी होती है। हम सबको अपने लिए अमल मुंतखब करना है, हक हो तो हक का साथ देना है, बातिल है बातिल को नहीं मानना। इस्लाम के रास्ते में, अल्लाह के दीन के रास्ते में जहां कुर्बानियों की नौबत आए पीछे नहीं हटना। ये नहीं सोचना कि कोई बात नहीं अब हम मजबूर हैं, नहीं, आला दर्जे अख्तियार करने हैं, अतना पे नहीं जाना, रुख्सतों को कबूल नहीं करना, अजीमत के रास्तों पे चलना है। यहाँ आप देखा कि सईद बिन आमिर मुसलमान हो गए। अब अगला हिस्सा जो है पढ़ते हैं, और इसके बाद आपको टाइटल दूंगी ताकि फिर आप भी उस फहम को महसूस कर सकें। सईद बिन आमिर रضي अल्लाहु अन्हु ने मक्का में सकूनत तर्क कर दी और मदीना की जानिब हिजरत की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और सोहबत में रहने लगे। खैबर और इसके बाद होने वाले गजवात में शिरकत का शर्फ हासिल किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के जवारे रहमत की तरफ कूच किया, यानी आपका इंतकाल हो गया, उस वक्त सईद बिन आमिर से इनकी खिदमात की वजह से आप बहुत खुश थे। आपके बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के हाथों में सईद बिन आमिर बरहना शमशीर बनकर रहे, यानी तलवार की तरह बने, और ऐसी जिंदगी बसर की जो मुसलमानों के लिए किरदार का नादिर नमूना साबित हुई, जिन्होंने दुनिया को बेचकर आखिरत का सौदा किया और अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में राजेख और मुकद्दम जाना। इस हिस्से का उन्वान क्या है? और तरजीहात बदल गईं। جب دل بدلا تو ترجیحات بدل گئیں، قربانی دینا آسان ہوا، ہجرت کرنا آسان ہوا، جو چیزیں پاؤں پکڑتی ہیں دنیا کی وہ چیزیں ہٹ گئیں اور سعید بن عامر کا نصیب بدل گیا اور وہ مکہ سے مدینہ آ گئے، کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ حکومت قائم کر چکے تھے۔ غور کیجئے کیسے دل بدلتے ہیں تو ترجیحات بدل جاتی ہیں، دوستیاں بدلنے لگتی ہیں، ساتھ بدلنے لگتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر حقیقت میں اس چیز کو دل کی خوشی بنا لیتے ہیں جو ایک وقت میں ان کے لیے ناراضگی کا سبب ہوتی تھی، اور وہ اس چیز کو یعنی اپنی خوشی بنا لیتے ہیں جو اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ مدینہ میں آتے ہیں اور وہاں پھر آپ دیکھیں جوہر دکھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ان کو قربانیاں دینے اور اپنی جرت اور اپنی بہادری دکھانے کا ایک ذریعہ بنا جو پھر لوگوں کے لیے نفع مند ہو گئے۔ ہم نے اسے کیا سیکھا کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اس کا عمل بھی بدلنے لگتا ہے۔ اگر آج تک ہم کوئی اپنا کام کرنا چاہتے تھے اور کر نہیں چکے، سوچ نہیں بدلی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی تبدیلی اندر نہیں آئی۔ ہم بھی ہجرتیں کروانا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں کر کے ان چیزوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوں، لیکن ہم کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ابھی سوچ نہیں بدلی۔ اگر اپنی اولادوں کا فکر ہے تو ان کی سوچ بدل دیجئے، پھر دیکھیے کہ عمل کیسے آتے ہیں۔ پھر آپ ان کو کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے راستے اسلام کی طرف خود بخود گامزن کرتے ہی رہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلیفہ یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی صداقت اور تقویٰ کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ سعید بن عامر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ خلیفہ بن چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار یعنی بات وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تمہیں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ مشکلات کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور حق کے راستے پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کے راستے میں کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعید، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے، یعنی ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکے جو خلافت کی صورت میں میرے اوپر ڈال دی گئیں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ تو یہ حصہ اس کا عنوان کیا ہے؟ وتواصوا بالحق۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سعید بن عامر تواصوا بالحق کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ امام وقت حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی غیرت اور جن کی ایمان کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن آپ دیکھیے کہ حق بات کہتے ہوئے سعید بن عامر جو ہیں یہ ان کو کیسی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ کرے آج بھی کوئی ایسا سعید آ جائے کہ آج کے حکمرانوں کے سامنے یہی خوبصورت کلمات بول سکے۔ یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں کتنی آزادی تھی۔ ایک شخص جو حکمرانی کے لیے منتخب ہوتا ہے، عام درجے کا جو شہری ہے وہ بھی ان کو نصیحت کر سکتا ہے۔ عمر فاروق نے نہیں کہا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی مجھے بات کرتے ہو، تم نے مجھے کیا سمجھا؟ اور ایسے ہی لوگ، یاد رکھیے، فائدہ اٹھاتے ہیں کسی بھی چیز سے، اپنے کانوں کو نصیحت سے بند نہیں کر لیتے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو حرفاً مولا سمجھتے ہوئے غلطیوں سے پاک سمجھیں اور جن کے اندر اونت اتنی آ جائے کہ ان کی بات کے انداز سے بھی پتہ چل جائے کہ وہ اپنے دل میں کیا سوچے بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگ پھر یاد رکھیے کہ بہت زیادہ دن تک دنیا کے نقشے پہ نظر نہیں آتے۔ اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ عنہ کو اپنی نصرت اور تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں علاقہ خمس کا گورنر بناتے ہیں۔ یہ خمس یا خمس دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، एक इलाका था। उन्होंने इसके जवाब में कहा, ए उमर रदी अल्लाह अन्हो, अल्लाह का वास्ता है मुझे इस आजमाइश में न डालिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने इस पर खफा होकर फरमाया, बड़े अफसोस की बात है कि तुमने खिलाफत का बोझ तनहा मेरी गर्दन पर डाल दिया और खुद इससे अलग थलग होने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह की कसम मैं छोड़ने वाला नहीं। इसके बाद आपने इनको सूबा खम्स का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और इरशाद फरमाया, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ मुआवजा मुकर्रर ना कर दें, यानी कुछ पे दें तुम्हें इस काम की। इस पर सईद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुआवजा लेकर क्या करूंगा? बैतुल माल से जो कुछ मुझे मिलता है वो भी मेरी जरूरत से ज्यादा है। और ये कहा और खम्स की तरफ चल पड़े। कुछ अरसे के बाद वहां रहने वालों में से काबिले एतमाद अफराद पर मुश्तमिल एक वफद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने उस वफद यानी ग्रुप जो था उसको हुक्म दिया, तुम लोग अफराद के नाम लिख कर दो जो तुम में से मुफलिस और नादार हैं, ताकि मैं इनकी माली मदद कर सकूं। वफद ने आपकी खिदमत में एक लिस्ट पेश की। क्या देखते हैं कि इस फहरिस्त में यानी इस लिस्ट में सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हो का नाम भी दर्ज है। आपने फरमाया, क्या कौन? सईद बिन आमिर? उन्होंने कहा, जी हमारा गवर्नर। फरमाया, क्या आपका गवर्नर मुफलिस है? उन्होंने कहा, जी हाँ। अल्लाह की कसम, कई कई दिन इनके चूल्हे में आग नहीं चलती। ये सुनना था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो बेख्तियार रो पड़े और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। और आप उठे और 1000 दीनार दिए और इनको एक थैली में भरकर फरमाया, इससे मेरा सलाम कहना और पैगाम देना कि अमीरुल मोमिनीन ने ये थैली तुम्हारे लिए भेजी है, ताकि तुम इससे अपनी जरूरियात को पूरा कर सको। ये वफद सईद बिन आमिर के हाथ थैली लेकर आया। आपने देखा कि इसमें तो दीनार हैं। थैली को अपने से दूर हटाकर बस ये कहने लगे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया के कोई मुसीबत नाजिल हो गई या कोई नागवार वाकया पेश आ गया। ये कैफियत देखकर आपकी बीवी घबराई हुई उठी और कहने लगी, मेरे सर के ताज, क्या कोई सानहा रूनमा हो गया? क्या अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए? यानी आपने जो इन्ना लिल्लाह पढ़ा तो शायद किसी की वफात की खबर आपको मिली। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि बात इससे भी ज्यादा अहम हो गई। फिर बीवी ने पूछा, क्या किसी मारका जिहाद में मुसलमानों को कोई सदमा पहुंचे? आपने फरमाया, इससे भी बड़ी बात हो गई। इसने अर्ज किया, भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फरमाया, मेरे हाँ दुनिया आ गई ताकि मेरी आखरत को बिगाड़ दे। मेरे घर फितना उभर आया। उसने अर्ज की, क्यों ना आप इस फितने से जान छुड़ा लें? उस बीवी को अभी तक दीनारों के बारे में कुछ इल्म न था। उन्होंने फरमाया, क्या तो इस सिलसिले में मेरी मदद करेगी? फरमाया, हाँ क्यों नहीं। और आपने दीनार कई थैलियों में बंद किए और गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिए। रदी अल्लाहु अन। गौर कीजिएगा कैसा किरदार है। हुकूमत मिल चुकी, गवर्नर है कि गवर्नर के घर में चूल्हा नहीं जलता। इस हिस्से का यही टॉपिक लिखेंगे, गवर्नर के घर चूल्हा नहीं जलता। आपको समझ आ रहा होगा कि इस्लाम ने इतनी तरक्की क्यों की और आज हमारी बस्तियों की वजह क्या है। कितनी ही बातें हैं इस हिस्से से जो हम ले सकते हैं। पहली बात आप देखिए कि जब उनको गवर्नरी मिली तो कहते हैं यह आजमाइश है। क्या आज भी ऐसा ही है? उन्होंने तो कोई फतह का जश्न नहीं मनाया। उन्होंने तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया ताकि पता चल जाए लोगों को कि आज हम इलेक्ट हो गए, आज हमारे यहाँ क्या होता है। फिर आप देखिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की फरासत भी समझ आती है कि उन्होंने इनके तकवा और जोहद की वजह से इनको एक इलाके का गवर्नर मुकर्रर किया। इससे क्या पता चलता है कि किसी मुसलमान मुल्क के हुक्मरान जो चुने जाएं तो उसकी बुनियाद उनका तकवा हो, उनका जोहद हो, अल्लाह से मोहब्बत की बात हो। फिर आप इससे एक और चीज अखज कर सकते हैं और वो क्या है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की बेहतरीन लीडरशिप कि आप हुक्मरान बन के अपने आप को बंद कमरों में या बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं महफूज करते थे, बल्कि अपने मुआशरे की खबर रखते थे। कहा कि मुझे उस मुआशरे के गरीब लोगों की खबर दो। आज के हालात में अगर हम इसको देखें तो आप देखिए कि क्या होता है। गरीब बेचारे लाइनों में लगे होते हैं कि हमें कुछ मदद दी जाए, वो अपनी अर्जियां पेश करते हैं और हुक्मरान सुनने को तैयार नहीं। लेकिन उमर फारूक खुद लिस्टें बनवाया करते थे कि कौन जरूरतमंद है। बेहतरीन मैनेजमेंट है, कोई शख्स किसी मैनेजिंग ओहदे पे मौजूद है तो उसको अपने लोगों की नजर रखनी चाहिए कौन वीक है। अगर हम ग्रुप लीडर हैं, हम अगर उस्ताद हैं, हमारी नजर होनी चाहिए कौन स्टूडेंट्स वीक हैं, उनको कितनी जरूरत है, किसको कहाँ जरूरत है, ताकि फिर उनकी मदद की जाए। फिर इसके बाद आप देखिए कि लोगों ने हजरत सईद बिन आमिर जो है उनकी खबर दी कि हमारा गवर्नर मुफलिस है। इससे क्या पता चलता है कि मुफलिसी हद को बढ़ी हुई थी, कि आम लोगों तक खुल गई उनकी बात कि घरों में चूल्हे नहीं चलते। फिर उसके बाद देखिए कि सईद बिन आमिर ने जब थैली को देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब पढ़ते हैं? जब कोई सदमा आता है, पूछिए अपने आप से, जब मुझे दुनिया की कोई नेमत मिले तो मेरा क्या कलमा होता है, हाय हुर्रा वाओ वट क्या। सवाल लिखिए अपने लिए दर एक, अगर मुझे 1,000 दिनार मिल जाए तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। और ऐसे तो अचानक लॉटरियों में निकलते हैं या ऐसी ही चीजों में जिसकी उम्मीद नहीं होती, तो उस वक्त हमारा हाल क्या होता है। फिर जरा गौर कीजिए कि बीवी की फरासत तो देखिए, जब कहा बहुत तकलीफ हालत हो गई तो क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए। यानी उनको पता था कि अमीरुल मोमिनीन जो मुसलमानों का हुक्मरान है उसकी वफात ही इतना बड़ा सदमा हो सकती है। उसने कोई अपनी जाती बात नहीं की, अपने खानदान के किसी शख्स का नाम नहीं लिया। फिर दूसरी देखिए, जब उन्होंने कहा इससे भी बड़ी बात हो गई, तो फिर बीवी ने क्या कहा, अच्छा फिर मुसलमानों को कहीं नुकसान पहुंचा। इससे क्या पता चलता है उस दौर की औरतों की फरासत भी कितनी थी, उनके दिलों और दिमागों पे भी इस्लाम छाया हुआ था। मैं आपको सबको यानी एक्टिविटी दे सकती हूँ कि खुदा न खास्ता अगर हमें कोई ऐसी खबर मिले कि कोई बहुत खराब हालात हो गए या मुश्किल हो गई, तो फोन करे आपको और कहे कि बहुत बुरी खबर है, सच्ची बताइएगा कि पहले जहन में क्या आएगा, फौरन क्या आता है। कोई कह दे, खुदा ना खास्ता किसी का शौहर ही घर में आए और कह दे कि बहुत बुरी खबर है, क्या कहेंगे? यानी माँ बाप बहन भाइयों की तरफ ख्याल जाएगा कि वहां खैरियत हो, ठीक, फैमिली की तरफ जाएगा, जी, पेरेंट्स की डेथ, और कोई मर गया है, ठीक है, और बाकी सब लिखें अपनी सोच कि क्या महसूस होगा जब कोई ये कह दे कि बहुत बुरी खबर है। एक लम्हे के लिए क्या आता है, दिल बैठने लगता है ना, कोई फैमिली प्रॉब्लम, एक्सीडेंट है, कोई माल की बात आ जाएगी, कोई नुकसान हो गया, बच्चों की तरफ ख्याल जाएगा, डेथ हो गई, जॉब प्रॉब्लम है, ले ऑफ हो गए, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप लोग, क्योंकि हम अमूमन इन्हीं चीजों के अंदर तो परेशान होते हैं। कोई एक भी ऐसा हो इल्ला माशाल्लाह कि जिसकी नजर मुसलमानों के मुस्तकबिल पे चली जाए। अल्लाह अकबर, अम्मी अब्बू का ख्याल आएगा, जॉब का ख्याल आएगा, फैमिली प्रॉब्लम का आएगा। सच कहा आपने, वापस पलटिए अपने सबक की तरफ, फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस्लाम की वो फिक्र लग जाए जो हमें अपनी जात की फिक्र है। हम तो घर बैठ के खबरें सुनते हैं, वो खबरें जो उनके लिए एक धमाके से ज्यादा नहीं हो सकती थी, हमारे लिए तो वो रोज का मामूल बन गया। और साथ खबरें सुनते हैं और साथ खाते पीते रहते हैं, साथ ऐश करते रहते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह उन पर रहम करे, हम तो अपने हाल में मगन है। तो अल्लाह ताला हमें एक उम्मत बना दे, उम्मत बन के जिए। फिर आप देखिए कि बीवी ने जब ये बात कही कि आप इस चीज से जान छुड़ा लें, जो भी मुश्किल आ गई है, तो कहा तुम मदद करोगी, तो कहा क्यों नहीं करूंगी, और फिर दीनार बटे। उस वक्त क्या उस बीवी के दिल में नहीं आया होगा कि क्या आज हमारे चूल्हे में आग नहीं जल सकती। लिखिए अपने लिए, अगर मैं सईद बिन आमिर की बीवी की जगह होती तो मेरा रद्द अमल क्या होता, क्या मैं ऐसे लम्हे में अपने शोहर की मदद करती या कहती कि चलो ठीक है अब चीज आ गई है तो ले लो, शुक्र करो अल्लाह ने भेज दी। नहीं, वही बीवियां थी कि जिन्होंने शोहरों को दीन के रास्ते में मदद की। और फिर एक और वाकया, इस वाकये को ज्यादा अरसा न गुजरा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ लाए। मकसद ये था कि इस इलाके के हालात मालूम कर सकें। इन दिनों खम्स का नाम कुवैफा पड़ चुका था, जो लफ्ज कूफा की तस्गीर है। तस्गीर कहते हैं किसी चीज को छोटा करना, और अरब में ये काम रिवाज है कि जो लफ्ज होता है उसको छोटा कर दिया जाता है। जैसे इबन बेटे को कहते हैं तो बुनई छोटे बेटे को कहते हैं। आजकल ये जितने भी इमाम हैं हमारे इर्द गिर्द जिनकी हम किरत सुनते हैं, इमाम खुजैफी, इमाम शुरैम और सुदैस, ये सारे तस्गीर है। सुदैस जो है ये सुदुस की तस्गीर है, प्यार से कहते हैं, ये अरबों का एक कल्चर है। इसी तरह आप देखिए कि शुरैम जो है ये भी शर्म से है। तो ये सारे इनके कबीलों के आज जितने भी नाम हमें दिखते हैं, ये असल में इनके फैमिली नेम्स है, ये सर नेम्स है। तो फिर कुवैफा, जिसको आज हम कुफा कहते हैं, ये इस नाम से इसलिए मशहूर हो गया कि यहाँ के लोग उमाले हकूमत, उमाले हकूमत कौन होते हैं, जो माल हासिल करने जाते हैं। जैसे ज़कात का माल जमा करने के लिए हुकूमत भेजा करती थी उन दिनों में लोगों को, जैसे मनी कलेक्टर्स जो लोग होते हैं वो, तो इनके खिलाफ शिकवा शिकायत करने में अहले कूफा से बहुत हद तक मुशाबहत रखते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो कुवैफा में आए तो यहाँ के लोग आपको सलाम अर्ज करने की खातिर हाजिर हुए। आपने दरियाफ़ फरमाया, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया, यानी इशारा था उनका हजरत सईद की तरफ के गवर्नर कैसा है। उन्होंने इसकी शिकायत में जुबान खोली और इनके तर्ज अमल के बारे में चार बातें कही जो एक दूसरी से बढ़ चढ़ कर थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने गवर्नर और शिकायत करने वालों को एक साथ तलब किया और अल्लाह तला से दुआ की कि अल्लाह सईद के बारे में मेरे गुमान को छूटा ना होने देना, कि मेरा गुमान उनके बारे में बहुत अच्छा है। अब लोग इन पर चार शिकायतें लेके आ गए हैं तो अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि ये बातें सच हों जो लोग इनके बारे में कहने वाले हैं। मुझे उस पर बहुत एतमाद था। जब ये लोग और इनका गवर्नर सुबह के वक्त मेरे पास आए तो मैंने दरियाफ्त किया, यानी मैंने पूछा, क्या तुम्हें अपने गवर्नर से कोई गिला है? उन्होंने बताया कि हाँ। क्या पहला शिकवा क्या था? कि ये दिन चढ़े तक घर से बाहर नहीं निकलते। इस पर मैंने पूछा कि सईद तुम इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? सईद रजी अल्लाह अन्हो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर फरमाया कि मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नापसंद करता था, लेकिन अब इसके बगैर कोई चारा ही नहीं कि मैं हकीकत साफ साफ खोल कर बयान करूँ। तो हकीकत यह है कि मेरे घर में मेरे पास कोई खादिम नहीं, कोई सर्वेंट नहीं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, घर वालों के लिए आटा गूंथता हूँ, फिर थोड़ी देर तक इंतजार करता हूँ ताकि आटे में खमीर पैदा हो, फिर इसके बाद रोटी पकाता हूँ, फिर वजू करके लोगों की खिदमत के लिए घर से निकल खड़ा होता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें इनके खिलाफ और क्या शिकायत है? उन्होंने कहा कि ये रात के वक्त किसी की नहीं सुनते, यानी रात के वक्त जब कोई शिकायत पेश करता है या इनसे कोई मदद तलब करता है तो ये मदद नहीं करते। मैंने कहा, सईद रदी अल्लाहु अन्हो, इस एतराज का तुम्हारे पास क्या जवाब है? फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस बात को भी कभी जाहिर ना करता, मगर किस्सा यह है कि मैंने दिन इनके लिए वक्फ कर रखा है, यानी मैंने दिन तो अपने हुकूमत के कामों के लिए डिवोट कर दिया और रात अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत के लिए, कि रात को मैं इबादत में मसरूफ होता हूँ। मैंने पूछा, आपको इनके खिलाफ और क्या शिकायत है? वो बोले, महीने में एक दिन गफलत से काम लेते हैं। मैंने पूछा कि सईद ये क्यों? सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ना तो कोई खादिम है और ना इन कपड़ों के सिवा मेरे पास कपड़ों का कोई जोड़ा है, और जो इस वक्त कपड़े मैंने पहन रखे हैं, महीने में एक मर्तबा धोता हूँ, फिर मुंतजिर रहता हूँ कि ये खुश्क हो जाएं। जब ये खुश्क हो जाते हैं तो मैं इन्हीं को पहनकर दिन के आखिरी हिस्से में इनका सामना करता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर मैंने दरियाफ्त किया, कोई और शिकायत? उन्होंने कहा, मजलिस में बैठे बैठे कभी इन पर गशी तारी हो जाती है और यूं मालूम होता है कि अहले मजलिस से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। मैंने पूछा कि सईद रदी अल्लाहु अन्हो, ये क्या बात है? सईद रदी अल्लाहु अन्हो ने कहा कि मैंने हजरत खुबैब बिन अदी की शहादत का मंजर अपनी आंख से देखा था। मैं उस वक्त मुशरिक था। मैंने देखा कि कुरैश उनकी बोटियां काट रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुझे ये बात पसंद है कि तेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? हुबैब जवाब में कहते हैं, खुदा की कसम, मैं हरगिज पसंद नहीं करता कि मैं तो अपने घर वालों में इत्मीनान से रहूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में एक कांटा भी चुभने पाए। जब भी वो दिन मुझे याद आता है, सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने उस दिन इनकी मदद क्यों ना की। डरता हूँ कि शायद अल्लाह ताला मेरा ये जुर्म मुआफ ना करे। इसके बाद मुझ पर गशी तारी हो जाती है। ये सुना तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने सईद के बारे में मेरे हुस्न जन को गलत साबित नहीं किया। इसके बाद आपने 1,000 दीनार भेजे ताकि इनसे अपनी जरूरियात पूरी कर लें। जब ये दीनार सईद बिन आमिर की बीवी ने देखे तो कह उठी कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें आपकी खिदमत से बेनियाजी बख्शी। यानी आपकी खिदमत से बेनियाजी का मतलब ये कि पैसे आ गए हैं, अब हम एक गुलाम ले लेंगे और काम वो करेगा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लिए जरूरत की कुछ चीजें खरीद लीजिए और घर के कामकाज के लिए एक खादिम रख लीजिए। इस पर आपने बीवी से फरमाया, मैं तुझे वो चीज ना दूं जो इससे भी बेहतर हो। बीवी ने कहा, भला वो क्या? فرمایا یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے عرض کی آپ نے درست فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا، جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کو سند رضا سے نوازا، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے، خود چاہے گھاٹے میں رہیں، رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو جائے، اور ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ پھر اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس حصے کا نام جو آخری آپ کے رب ہے، یعنی آپ جہاں سے لکھ رہے ہیں، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ چلیں آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے۔ جو آپ نے اس حصے سے پک کیا وہ ایک لفظ میں بات کریں، ٹائٹل ہوگا ایک لفظ یا جملہ، زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کا خوف، اللہ کی رضا، آزمائش، اللہ کی رضا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ جس کا انتخاب کیا، اعلیٰ چیز کا انتخاب کیا ادنا کی بجائے، اللہ راضی ہو گیا، دنیا کی حقیقت، قرض حسنہ، اللہ سے محبت، انا للہ و انا الیہ راجعون، زہد، اللہ کی رضا دین میں، دنیا کی بجائے آخرت۔ ٹھیک ہے، شاباش، آپ سب نے بہت ہی اچھے ٹائٹلز دیے۔ تو اس کا عنوان کیا ہوگا؟ تاریخ ساز لوگ۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ خود ساز، ہم خود کو بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تاریخ بنائی، یہ تھے مسلمانوں کو اعلیٰ رفعتیں دینے والے، اور اسی وجہ سے مسلمان بلند تھے جب تک ایسے حکمران تھے، اور ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے آج بھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے ہی حکمران ہمیں مل جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، ایسے حکمران آرام سے نہیں ملتے۔ یہ کب ملتے ہیں؟ جب ہم اچھے ہوں گے تو حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ پورے واقعے سے جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہی آئی کہ آج ایسی کہانیوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب کا ہوم ورک ہے کہ اس پورے ویک میں، نیکسٹ ویک سے پہلے، آپ نے یہ کہانی یا یہ واقعہ کم از کم 5 لوگوں سے شیئر کرنا ہے۔ بیسٹ طریقہ اس کا کیا ہے؟ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو مورلز لکھانے کی کوشش کی، یہ 7 چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 5 ڈفرنٹ ٹاپک تھے۔ پوری بات سنانے کی بجائے آپ یوں کیجئے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹائم رکھیں، 10 سے 15 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ کہ جب بچوں کو آپ تھوڑی سی بات سنائیں گے اور کہیں گے باقی کل سناؤں گی، تو وہ زیادہ انجوائے کریں گے بجائے اس کے کہ پوری بات آج ہی سنا دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں 6 ٹاپک تھے، اور بچوں کو پہلے دن تھوڑی سی تمہید باندھ کے تو یہ ان کے پہلا حصہ سنا دیں، اور اس کو سٹوری کل سنائیں۔ اردو میں ہے تو بچے تو پڑھ بھی نہیں سکتے نا، تو آپ ان کو سنائیں، اور اس طرح آپ پھر اس سے باتیں کریں، بیٹا آپ ہوتے تو آپ کیا کہتے، یعنی ان کی گرومنگ کریں۔ 10 سے 15 منٹ اس طرح کی بات کریں۔ جی، جن کے پاس بچے نہیں ہیں تو وہ کسی کے بچوں کو سنا دیں۔ میں چاہوں گی کہ اس کو ٹین ایجرز بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں فیملی کے، یہ کہیں بھی سنا سکتے ہیں۔ کسی اسکول میں جاتے ہیں، سنڈے اسکول ہے، سیٹرڈے اسکول ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی یہ اگر سنا دیں، ابھی یہ کہانیاں ہیں، بعد میں انشاءاللہ تعالی یہ ان کے کردار میں ڈھل جائیں گی۔ بچے تو اتنی جلدی یعنی پک کرتے ہیں نا ان چیزوں کو، جس لیول پہ ہیں ان کو مرس، اور کوئی نہیں تو ہسبینڈ سے شیئر کریں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں، جیسے بھی کریں، لیکن اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو شروع کر کے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس لمحے میں ہم آنے والی نسل کی ایک ایسی کردار سازی کرنے کی کوشش کی طرف چل پڑے۔ صحابی کی بات پڑھتے رہے تو امید ہے نا کہ یہ باتیں ماؤں کو بھی پتہ چلیں گی اور بچوں کو بھی پتہ چلیں گی۔ میں آپ سب کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، جو آپ نے یہاں وقت لگایا، جو محبت سے سنا سیکھا، اس کی برکت آپ اپنی نسلوں میں دیکھیں، اپنے بچوں میں دیکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔